एज़रा अध्याय एक। हम एज़रा की पुस्तक खोलें। एज़रा की पुस्तक का प्रथम भाग शायद एज़रा ने ही लिखा है, परंतु उसने अभिलेखों की सहायता ली थी। जब राजा कुसरू ने मंदिर निर्माण के लिए आदेश निकाला था, तब एज़रा जीवित नहीं था। इस पुस्तक के अध्याय सात तक एज़रा का नाम कहीं भी नहीं है, अर्थात उसके लिए प्रथम पुरुष का उपयोग नहीं किया गया है। पहले छह अध्यायों में इसराइलियों को बाबुल के दासत्व से लौटाकर अपने देश में बसाने का उल्लेख है। अध्याय एक पद एक और दो। फारस के राजा कुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुसरू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यरमिया के मुंह से निकला था वो पूरा हो जाए, इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में ये प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया कि फारस का राजा कुसरू यूं कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर ने पृथ्वी का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवाए। पहले पद में लिखा है यहोवा का जो वचन यरमिया के मुंह से निकला था वो पूरा हो जाए। अब देखिए यरमिया में क्या लिखा है। यरमिया अध्याय 25 पद 11 से 13। ये देश उजाड़ होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बाबुल के राजा के अधीन रहेगी। जब 70 वर्ष बीत चुके तब मैं बाबुल के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। मैं उस देश में अपने वे सब वचन पूरे करूंगा जो मैंने उसके विषय में कहे हैं। इसके आगे देखिए यरमिया 29 में लिखा है। यरमिया अध्याय 29 पद 10 से 14। यहोवा यूं कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना ये मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की ये वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको बरबस निकाल दिया है और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंधुआ करवा के निकाल दिया था, यहोवा की यही वाणी है। इसी के साथ दानियल अध्याय 9 देखें। दानियल अध्याय 9 पद 1 से 4। मादी शयर्ष के पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यरमिया नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। जब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भययोग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है और करुणा करता रहता है। दानियल यरमिया की भविष्यवाणी को जानता था कि गुलामी का समय 70 वर्ष होगा और इस समय वो परमेश्वर को खोजता रहा था कि इसराइलियों के अपने देश में पुनर्वास का समय उसकी क्या भूमिका होगी। फारस के राजा कुसरू के पहले वर्ष में यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हुआ। अब कृपया यशया 44:28 पद पर ध्यान दे। देखिए परमेश्वर कुसरू के विषय क्या कहता है। यशया अध्याय 44 पद 28 और 45 अध्याय का पहला पद। वो मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय वो कहता है वो फिर से बसाई जाएगी और मंदिर के विषय कि उसकी नींव डाली जाएगी। अध्याय 45 पद 1 में यहोवा अपने अभिषिक्त कुसरू के विषय में यूं कहता है, मैंने उसके दैने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं। आपको याद होगा कि लिखा है, बेलशस्सर के घुटने उस रात कांपने लगे जिस रात उसने एक कटे हुए हाथ को दीवार पर लिखते देखा था। इस दृश्य में बेलशस्सर ने एक भविष्यवाणी देखी। यशया 45 अध्याय 1-4। राजाओं की कमर ढीली करूं, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाएं। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के भेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार से छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिसमें तू जाने कि मैं इसराइल का यहोवा परमेश्वर हूं जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इसराइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। आज हम पढ़ रहे हैं फारस के राजा कुसरू के पहले वर्ष में, परंतु इसकी भविष्यवाणी यशया ने 200 वर्ष पहले ही कर दी थी। यशया ने लिखा कि उसने उसे नाम लेकर बुलाया, मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया था यद्यपि तू मुझे नहीं जानता। परमेश्वर ने 150 से 200 वर्ष पहले, जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था, उसका नाम लेकर उसे बुलाया और घोषणा की कि वो उसके लोगों को स्वदेश लौटा देगा कि वे मंदिर का पुनर्निर्माण करें। कैसी सटीक भविष्यवाणियां! धर्मशास्त्री एज्रा किस मजबूती से यशया और दानियल की भविष्यवाणियों में अवस्थित है। दानियल ने पहले भविष्यवाणी की थी कि फारस का राजा बाबुल राज्य को नष्ट करेगा, और इसी तरह यिर्मयाह भविष्यवाणी करता है कि 70 वर्ष बाबुल में दास रहने के बाद परमेश्वर उनको आजाद कर देगा। धर्मशास्त्र के इतिहास में ऐसे समय उत्तेजना से पूर्ण होते हैं जब आप उस स्थान पर हो जहां परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा कर रहा है, अर्थात ऐतिहासिक घटनाएं भविष्यवाणी के क्रम में व्यवस्थित होती जा रही हो। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा है 70 वर्ष तक तुम दासत्व में रहोगे। आप हिसाब लगाइए कि 70 वर्ष कब पूरे होते हैं, तो आप उत्तेजित हो उठेंगे ये जानकर कि अब परमेश्वर कार्य करने वाला है, क्योंकि 70 वर्ष पूरे होने पर है। अब कुसरू ने बाबुल को जीत लिया था। उसके विषय परमेश्वर ने कहा था, मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तू मेरी कामना पूरी करेगा, तू लोगों को गुलामी से लौटने में मेरी इच्छा पूरी करेगा। आप देख रहे हैं वचन के अनुसार घटनाएं एक के बाद एक क्रम में व्यवस्थित होती जा रही है। इससे आशा बढ़ती है, उत्तेजना बढ़ती है कि मुक्ति का समय आ रहा है। आज भी उन्हीं दिनों की तरफ घटनाएं एक साथ जुड़ रही है और संसार में घट रही है, और हमें अकस्मात ही भविष्यवाणियां स्मरण हो आती है। यही तो भविष्यद्वक्ता एहेस्केल ने कहा था कि होगा, और हां यशया ने भी तो यही कहा था। देखिए परमेश्वर किस प्रकार घटनाओं को संयोजित कर रहा है और हम इतिहास के एक विशेष युग में प्रवेश कर रहे हैं, जिस प्रकार हमने परमेश्वर के कार्य को एज्रा के पहले अध्याय में देखा, जहां परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने की तैयारी कर रहा है और उसने भूमिका तैयार कर दी है। कही हुई बातें पूरी होगी। वातावरण में उत्साह भरा हुआ है क्योंकि स्पष्ट है कि परमेश्वर का वचन पूरा होगा। परमेश्वर ने जो कुछ कहा है वो घटेगा। यीशु ने कहा है, यूहन्ना 13:19, अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूं कि जब हो जाए तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। इतिहास के ऐसे समय में रहना सदा उत्तेजनापूर्ण होता है। जब परमेश्वर भविष्यवाणी के वचन को इतिहास में प्रकट करना आरंभ कर देता है, हम देखते हैं और सोचते हैं, ओह, भविष्यद्वक्ता यही तो कहते थे। परमेश्वर ने कहा था कि ऐसा होगा, देखो वैसा ही हो रहा है। ऐसा समय बड़ी उत्तेजना का समय होता है। दानियल ने पहले से बता दिया था कि फारस का राजा बाबुल को पराजित करेगा। वो नबुकदनेस्सर के दरबार में एक सलाहकार था, परंतु जब नबुकदनेस्सर का पोता बेलशस्सर राज्य करने लगा, तब तक दानियल की सेवाएं समाप्त हो चुकी थी। जब दीवार पर हाथ का लेख लिखा गया, उन्होंने दानियल को बुलाया, पर बेलशस्सर उसको नहीं जानता था। उसने पूछा, क्या तुम दानियल हो जिसने मेरे दादा की सहायता की? तब दानियल ने उस लेख का अर्थ उसे बता दिया, परमेश्वर ने तेरे राज्य का दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है, अर्थात उसका समय बहुत कम रह गया। दानियल शायद इस समय 90 वर्ष का था। वो लगभग 110-115 वर्ष तक जीवित रहा। जब मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया वो जिंदा था। फिर राजा दारा राज्य करने लगा और करीब 16 वर्ष के बाद उसने आज्ञा लिखी और निर्माण कार्य फिर से आरंभ करवाया था। मंदिर निर्माण का आदेश खुसरू राजा ने निकाला था और लगभग 50,000 यहूदी स्वदेश लौटे थे, जहां उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण और पुनर्वास का कार्य आरंभ किया। अब खुसरू दृश्य से हट जाता है और एक नया राजा आता है जो मंदिर निर्माण का कार्य रुकवा देता है। इस राजा के बाद दारा का आगमन होता है, जो लगभग 16 वर्ष पश्चात मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य को नए सिरे से आरंभ करवाता है। ये वही दारा राजा है जो दानियल का मित्र था। दानियल के विरोधियों ने बड़ी चतुराई से राजा दारा से आदेश पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिया था, जिस पर लिखा था, यदि कोई 30 दिन तक मुझे छोड़ किसी अन्य देवता की उपासना करेगा तो उसे शेरों की माद में डाल दिया जाएगा। दानियल के विरोधियों ने आकर उसे सूचना दी, एक व्यक्ति है जिसने तेरी आज्ञा को तोड़ा है, परिणाम स्वरूप उसे शेरों की माद में डाल देना चाहिए। राजा ने पूछा, वो कौन है? उन्होंने कहा, दानियल। ये सुनकर दारा बहुत दुखी हुआ। राजा ने पूरा दिन युक्ति खोजने में व्यतीत किया कि अपने आदेश को किस प्रकार रोक ले, परंतु मादी फारस राज्य में जिस आदेश पर एक बार मोहर लग जाती थी वो बदला नहीं जा सकता था। अतः उसने दानियल को हियाव बांधते हुए कहा, दानियल, जिस परमेश्वर की तू सेवा करता है वो तुझे शेरों के मुंह से बचाएगा। दानियल ने उत्तर दिया, चिंता मत कर, मुझ में बहुत साहस है, मुझे कुछ नहीं होगा। उन्होंने उसे सिंहों के मांद में डाल दिया, पर राजा पूरी रात सोया नहीं। वो इस घटना से दुखी था। सुबह होते ही वो वहां गया और धर्मशास्त्र बताता है, वो शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, हे दानियल, जिसकी तू नित्य उपासना करता है, क्या वो तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। दानियल को बाहर निकाला गया और जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली की थी सिंह के माद में डाले गए। वे पैंदी तक भी न पहुंचे थे कि सिंह ने झपट कर उनको चबा डाला। इसी दारा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि उसने मंदिर के पुनर्निर्माण की आज्ञा दी थी। ये आज्ञा भी निकाली थी कि पैसे देकर उनकी सहायता की जाए। इसलिए इस कहानी को छोड़कर हम आगे जाएंगे। राजा कुसरू ने आज्ञा निकाली, इसराइल के लोग जहां भी है यरूशलेम जाना चाहे तो जा सकते हैं और जाकर प्रभु के घर को, इसराइलियों के परमेश्वर के घर को बनाएं, क्योंकि यही वो परमेश्वर है जो यरूशलेम में है। अध्याय 1:4-9 तक। और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो जहां वो रहता है, उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करें, और इससे अधिक परमेश्वर के यरूशलेम के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट चढ़ाएं। तब यहूदा और बिन्यामीन के जितने पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाएं, वे सब उठ खड़े हुए, और उनके आसपास सब रहने वालों ने चांदी का पात्र, सोना, धन, पशु और अनमोल वस्तुएं देकर उनकी अपनी सहायता की। ये उन सब से अधिक था जो लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से दिया। फिर यहोवा के भवन के जो पात्र नबुकदनेज़र ने यरूशलेम से निकालकर अपने देवता के भवन में रखे थे, उनको कुसरू राजा ने मिथुदत खजांची से निकलवाकर यहूदियों के शेष बसर नाम प्रधान को गिनकर सौंप दिया। उनकी गिनती यह थी, अर्थात सोने के 30 और चांदी के 1,000 परात और 29 छुरी। अशूरों और बाबुल वासियों की नीति ये थी कि पराजित राष्ट्र के लोगों को लाकर अनजान स्थानों में बसा दिया जाए, जिससे कि वो अपनी राष्ट्रीय पहचान को खो दें और इस प्रकार उनके विद्रोह की आत्मा नष्ट हो जाए। परंतु फारसी अशूर और बाबुल से अधिक मानववादी थे। उनकी नीति थी कि दासों को पुनः अपने देश में बसाया जाए। हम यहां देखते हैं कि यहूदा, लेवी और बिन्यामीन के गोत्र, और बाद में हम देखेंगे कि मनशे और कुछ एप्रेम के गोत्र भी स्वदेश लौटे थे। मैं उनका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड के मूल निवासी ये मानते हैं कि वे इसराइल के 10 खोए हुए गोत्रों में से हैं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि ये 10 गोत्र खो गए हैं। सत्य तो ये है कि नया नियम संदर्भ देता है, याकूब 1:1, उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। इन 12 गोत्रों के लोग जो अब भी जीवित थे और नए नियम के युग में भी वे अपना संबंध अपने अपने गोत्र से बनाए हुए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी गोत्र खोया नहीं था। खोए हुए गोत्र एक प्रकार से काल्पनिक नाम है जो लोगों ने किसी कारण विकसित कर लिया था। यहां पर बिन्यामीन के गोत्र के भी लोग थे। इस तरह यहूदा और बिन्यामीन के गोत्र के भाग एक साथ थे, और मनशे, एप्रेम और लेवी के गोत्र भी थे, और इस प्रकार हमारे पास अनेक कुलों की पहचान है। नए नियम में पौलुस कहता है कि वो बिन्यामीन के गोत्र का था। निस्संदेह यीशु के समय में भी लेवी कुल के लोग थे। हो सकता है आज वे अपने गोत्रों की पहचान न रखते हो, जो आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि कुलों की पहचान वास्तव में मसीह यीशु के आगमन तक ही आवश्यक थी। यीशु को यहूदा के गोत्र से आना था। अब क्योंकि मसीह यीशु यहूदा के गोत्र से आया, इसलिए अब गोत्रों की पहचान आवश्यक नहीं है, क्योंकि सब कुछ पूरा हो गया है। सत्य तो यह है कि परमेश्वर जानता है कौन कहाँ है। वो प्रत्येक कुल में से 12,000 पर शीघ्र ही मोहर लगाएगा, क्योंकि वो मसीह यीशु के पुनः आगमन की तैयारी में लगा हुआ है कि पृथ्वी को व्यवस्थित करे। वो प्रत्येक कुल से 12,000 अर्थात 144,000 इसराइलियों पर मोहर लगाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि परमेश्वर निश्चित रूप से जानता है कि वे कौन हैं और कहाँ हैं, चाहे वे स्वयं न जानते हो कि वे किस कुल के हैं, परंतु परमेश्वर जानता है।